ओम शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। 12 वर्ष की उम्र में आप मुंबई माया नगरी से निकले, ईश्वर के अनमोल रतन हैं। और मुंबई में ही रहते आपने न सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन यूं कहें कि साकार बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ। और तब से ही लौकिक और अलौकिक पढ़ाई आप दोनों पढ़ते रहे। और फिर 1969 में जब आपने बीएससी पूरा किया तो मधुबन में 1969 में जनवरी में तो बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन अप्रैल मई के मास में टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई थी। तो उस प्रथम टीचर्स ट्रेनिंग में दीदी ने पार्टिसिपेट किया और टीचर बनकर तैयार हुई। और बाबा ने, दादियों ने आपको सेवा अर्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा। आरंभ में आप राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, फिर अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर गए। तो 1969 से 1976 तक देश और विदेश में सेवा अर्थ भ्रमण करते, सेवाओं को बढ़ाया, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 76 में मॉरिशस से जब पुनः आए, आपको बहुत सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई। दादी ने स्वयं ऑफर किया आपको मधुबन निवासी बनने के लिए, और आपने उस ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया। तो उसी 1976 के ईयर से आप मधुबन धरनी पर रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया है और अनेकों के जीवन में परमात्मा को लाकर परमात्मा से उनका संबंध जोड़ा है, उनके जीवन को संवारा है। वर्तमान में आप हमारे जो राजयोग शिविर चलते हैं उनकी निर्देशिका है। एजुकेशन विंग के आप उपाध्यक्षा हैं। मधुबन धरनी में, पांडव भवन में जो विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं या फिर भारत वाले भाई बहनों के भट्टियों के प्रोग्राम चलते हैं, आप उसके मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं गुप्त रीति से आपकी चलती रहती है, जैसे कि मुख्यतः ट्रांसलेशन की सेवा और भी अनेक प्रकार की सेवाएं चलती हैं। और मधुबन धरनी में रहकर जो आपने पालना ली है दादियों की, जो बाबा की, आज उसी पालना का रिटर्न आप सबको देते हैं। आज हम देख रहे हैं दादियां अव्यक्त होती चली गई हैं, लेकिन फिर भी आपने जो पालना ली है वैसी ही पालना सबको देकर वो दादियों की भी भरपाई करने में सक्षम है। और आपके जीवन में हम हमेशा देखते हैं नम्रता, मधुरता और सहनशीलता की त्रिवेणी सरिता सदाई बहती रहती है। तो बहुत सारी खूबियां हैं, किसका वर्णन करें और किसका नहीं। अमूल्य है, अतुल्य है, कोहिनूर हीरा है बाबा का। आज हमारे बीच में अपने अनुभव के आधार से स्पष्ट करेंगे भट्टी का लक्ष्य। विशेष जो टॉपिक दिया है, संपूर्णता के लिए संतुष्टता का महत्व, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
आप भी अपना परिचय दें।
शरीर का नाम इंद्रा बहन है। घर बैठे 1987 में ज्ञान लिया और फिर 94 में पहली बार ओम शांति भवन में बाप दादा से मुलाकात की और उसके बाद मधुबन धरनी में आने का सिलसिला आरंभ हुआ। पहले के कुछ 2-3 वर्ष सेवा करते रहे, फिर 1998 से स्पार्क ज्ञान सरोवर में हमें विशेष सेवा मिली। 5 वर्षों तक स्पार्क में सेवाएं देते रहे, जहां पर रहते हुए बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने की, जिस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा। इतनी मोटी पुस्तक है जो लिटरेचर में सेल भी होती है। और उसके बाद तो चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, हम नागपुर सेवा केंद्र पर भी रहे और चूंकि स्पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई उषा बहन से जुड़े थे, उन्होंने फिर कामदेवी सेवा केंद्र पर अवसर दिया। चूंकि मधुबन धरनी से निकले थे, पुनः कामदेवी के बाद मधुबन धरनी में शिरु बहन का ऑफर मिला, तो 2009 से 11 वर्षों तक ज्ञान सरोवर नागपुर मुंबई का सफर तय करके 2009 से इस हेडक्वार्टर पांडव भवन में शिलु दीदी के साथ उनकी जो सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखाया, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और जैसे दादी कहते थे वैसे नशा भी चढ़ाते थे। तो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, सब दादियों की भी तपस्या भूमि, ऐसे भूमि पांडव भवन में आप सब बठी करने आए हैं। मैं समझती हूँ पहली बार बठी कर रहे हैं, ये पहले की है बठी? 2016 में आए पहले, उसमें इन में से कौन थे 2016 में? अच्छा, वेरी गुड। तो मधुबन पांडव भवन में सबकी ये आश रहती है कि हम यहाँ बठी करें, क्योंकि विशेष वाइब्रेशंस बाबा के, दादियों के अभी तक भी विराजमान है। तो ऐसे स्थान पर बठी का आपको मौका मिला तो आप लोग बहुत 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 लकी हो। और मधुबन में आप सभी आए हैं, इसलिए हमारे तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा की आजकल की मुरलियाँ बहुत ही पावरफुल चलती है, चाहे साकार मुरलियाँ चाहे अव्यक्त मुरलियाँ। हर मुरली में चारों सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से बाबा हमें हमारा लक्ष्य जरूर याद दिलाते हैं। एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य तो बहुत व्यापक होता है, लक्ष्य ये अलग अलग गोल्स, फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल वो लक्ष्य होते हैं, पर अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना है ये उन लक्ष्यों में सिद्ध करते हैं। तो बाबा ने उद्देश्य तो बहुत बड़ा दे दिया है। आज भी बाबा ने कहा है कि तुम लाइट हाउस हो, तुम पंडे हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते हो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? घर जाना है और सतयुगी दुनिया में आना है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन घर जाने के लिए हमें किन लक्ष्यों को पार करना है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशंस है वो भी समझ में आ गई। बाबा ने हमें हमारे अलौकिक जन्म की बहुत सुंदर सौगात भी दी, दिव्य बुद्धि की सौगात या दिव्य नेत्र की सौगात, जिससे गुण शक्तियां, ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा का खजाना है उनको हम धारण करते रहे। और उसमें लक्ष्य था कि ये सब धारण करके हमें बाप समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। पहले संपन्न बनेंगे फिर संपूर्ण बनेंगे। दोनों में अंतर क्या है? संपन्न और संपूर्ण, क्योंकि आपकी भट्टी का भी यही लक्ष्य है, उद्देश्य है। संपन्न भी बनना है तो संपूर्ण भी बनना है। तो संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो संपन्न माना फुल और संपूर्ण माना कंप्लीट। इसको और सहज समझ सकेंगे। तो संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णमासी की रात संपन्न भी होता है फिर संपूर्ण भी होता है, तो जब तक पूर्णमासी आए, पूनम आए, तब तक धीरे धीरे बढ़ता है, शेप भी बदलती रहती है। और पूर्णमासी हुई, फुल हो गया, उनका प्रकाश भी संपन्न हुआ और उसका आकार संपूर्ण हो गया। तो बाबा भी कहते पहले संपन्न बनना है तब संपूर्ण बन सकेंगे। जब तक संपन्न नहीं बने हैं तब तक संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। और संपन्न माना ज्ञान भी संपन्न। भगवान हमको जो ज्ञान देते हैं वो हम बच्चों के लिए ही है। और बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को ज्ञान देकर खाली हो जाता हूँ, इतना दे देते हैं बाबा। वैसे तो खाली क्या होंगे, चाहे कितना भी सागर देवे तो भी सागर तो भरपूर होता ही है। तो ज्ञान का खजाना बाबा हमको रोज देते हैं। फिर गुणों का खजाना, बाबा हमें गुणवान बनाते हैं। और फिर शक्तियों का खजाना, ये तीन विशेष खजाने बाबा हमको दे करके लक्ष्य देते हैं, बच्चे तुम्हें संपन्न बनना है। कोई भी शक्ति की कमी ना हो, कोई भी गुण की कमी ना हो और ज्ञान की तो बिल्कुल कमी ना हो। कदम कदम पर ज्ञान बुद्धि में हो तो हम हर कर्म श्रेष्ठ कर सकेंगे ज्ञान के आधार पर। बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी, परक शक्ति निर्णय शक्ति सही रूप में आ जाएगी और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो ज्ञान में भी संपन्न हम बनते हैं, फिर गुणों में भी संपन्न। तो कहाँ से हम शुरू करें? गुणों में संपन्न बनने के लिए हम कहाँ से शुरू करें, पहला कदम क्या होगा, तो कई बार हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं और पहला ही गुण है अंतर्मुखता। तो हम समझते हैं कि अंतर्मुखता पहला गुण है, वो आने से सब गुण आ जाते हैं। एक हिसाब से तो सही है, जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, तो हम अंतर्मुखी बन जाते हैं, अपने अंतर में अपने आप में रमण करते हैं और उससे कई गुण और प्रकट होते हैं। और बाबा ने उस दिन भी कहा कि कछुए जितना भी अकल क्या नहीं है बच्चों को, बाबा की मुरली में था, कछुए में भी अकल है, उसको कहीं भोजन लेना है तो चलेगा, कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाएगा। तो पेट भर लिया फिर क्या करेगा, हाँ, अपनी इंद्रियों को समेट लेगा और वहां ही अंतर्मुखी होके बैठेगा। इसलिए जितने भी जीव है, जानवर है, पक्षी है, पशु है और इंसान भी है, सबसे जास्ती उम्र अगर किसी जीव की है वो है कछुआ, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, कितना धीरे धीरे चलता है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसीलिए वो हार्ट बीट या चाहे जो भी उनका ब्लड सर्कुलेशन या भोजन वो सीमित है, इसलिए क्या होता है उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। हम वियतनाम गए थे, वियतनाम में एक कछुआ, अभी अभी सुना कि वो अभी अभी गुजर गया, मर गया, उसकी उम्र 500 साल थी, 500 साल का कछुआ, और लोग आकर के उसकी पूजा करते थे, वो कछुए, हाँ, उसको रखा था एक छोटे से पॉन्ड में और उसकी पूजा करते थे। आप बताओ, हाँ, 500 साल का था। अभी न्यूज़ बताई कि अभी उसकी डेथ हुई कुछ एक दो महीने पहले। तो खास देखने के लिए जाते हैं टूरिस्ट, वो 500 साल का कछुआ, आज कौन जीना रह सकता है 500 साल, लेकिन कछुआ रहता है क्योंकि वो अंतर्मुखी है। तो बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को क्या करना है, हाँ, कार्य किया, कर्मयोगी बनकर और फिर समेट लो, इसको बाबा कहते अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखता के साथ कई गुण आ जाते हैं, फिर गंभीर भी होगा, धैर्यता भी होगा, धैर्य भी होगा, उसमें सहनशीलता भी होगी, ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। लेकिन उस दिन रविवार की मुरली में बाबा ने कहा कि संतुष्टता यही संपूर्णता का आधार है, जिससे स्वास्थ्य, संपन्नता यानी संपत्ति, और तीसरा क्या कहा, स्वास्थ्य संपत्ति और संबंध, ये तीनों ही कैसे श्रेष्ठ बनते हैं। और उस पर कितनी सुंदर मुरली बाबा ने चलाई, क्योंकि सारी बात तो हमारी सोच से ही होती है, उसी सोच या स्मृति जिसको बाबा कहते हैं, उस स्मृति से ही स्थिति बनती है, स्मृति से ही शक्ति आती है। जब बाबा वरदान देते हैं तो वरदानों को भी जीवन में अनुभव करने के लिए स्मृति चाहिए। वरदान तो बाबा ने बहुत दे दिए, टाइटल तो बाबा ने बहुत दे दिए, आज भी बाबा ने दो टाइटल दिए, कौन से, कौन हो तुम, लाइट हाउस हो, बाबा ने कहा ना लाइट हाउस, आज की मुरली सुनी, पढ़ी तो होगी, सबको मिल जाती होगी। आज की मुरली में बाबा ने टाइटल दिया लाइट हाउस हो, तुम सबको रास्ता दिखाते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो लाइट हाउस क्या करता है, जहाजों को रास्ता दिखाता है, और एयरपोर्ट पर भी वो सर्च लाइट होती है, आकाश में घूमती है, वो हवाई जहाजों को रास्ता दिखाती है रात्रि के समय। तो तुम लाइट हाउस हो तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। और दूसरा टाइटल क्या दिया, तुम रूहानी पंडे हो। तो रूहानी पंडे क्या करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे, वहां के गाइड बनेंगे। तो बाबा तो गाइड है ही, लेकिन हम बच्चे पांडव सेना, पांडव माना पंडा, गाइड। तो बाबा हमको भी गाइड बनाते हैं ताकि हम भी सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं। लेकिन ये तब संभव होगा जब पहले हम अपने अंदर इतनी धारणा कर सकेंगे। ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, योग में बैठते हैं बड़ी बात नहीं है, धारणा का क्लास करा लेते हैं बड़ी बात नहीं है, सबको बाप का परिचय देते ये भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी अपनी स्मृति और उस अनुसार स्थिति और उस अनुसार आंतरिक सर्व प्राप्तियां, वो हम कितना अनुभव करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं स्वरूप बनना। वरदान तो बाबा के हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उन वरदानों का स्वरूप कितना बनते हैं हम, ये हम अपने आप से पूछें। बाबा हमें वरदान देते हैं तुम होली हंस हो, तो हम अपने आप से पूछते हैं सचमुच हम होली हंस हैं, नशा तो चढ़ा देते हम होली हंस हैं, लेकिन सचमुच हैं, क्योंकि होली हंस की परिभाषा बाबा ने दी, मोती चुगना, कंकड़ को पत्थर को फेंकना, तो गुण ग्रहण करना और अवगुण को छोड़ना। तो क्या सचमुच हम होली हंस बन करके ये कार्य करते हैं, क्योंकि अवगुण तो सब में है, किसमें नहीं होगा, लेकिन एक गुण तो जरूर होगा। क्या हम केवल उस एक गुण को ही देखते हैं या उसके 99 अवगुण को देखते हैं? अगर वो 99 अवगुण दिखाई देते हैं तो हम होली हंस कहाँ हुए, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई भी गुण ना हो, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर तो सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे होने के कारण जैसे भगवान में सब गुण है, तो कम से कम एक गुण तो होगा उनके बच्चों में, और वो एक गुण ही हम अगर देखें और उसी अनुसार हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, शुभ कामना करें, तो ये भी जैसे एक दुआ हो जाएगी। और हमने दुआ दी तो ऑटोमेटिकली उसको वो शक्ति अनुभव होगी, और फिर तो उनकी तो 100 गुना दुआएं मिलेगी। इसलिए दुआ दो दुआ लो बाबा कहती है, तो दुआएं काम करती है। दादी जी हमेशा यही काम यही कहते थे, दादी जी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते, दादी प्रकाशमणि जी से, तो दादी जी कहती थी मैं तो बस दुआओं से चल रही हूँ, यहाँ तो ऐसे ही कहती थी। फिर भी दादी कुछ तो आप पुरुषार्थ करते हैं, करते होंगे, दादी कहती है मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बाबा ने हमें असोच बना दिया है, असोच बना दिया है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्या नई जिम्मेदारियां थी, लेकिन बाबा ने उनको असोच बना दिया। एक सेकंड में नींद आ जाती थी, दादी बिस्तर पर गई एक बच्चा बन जाती थी, नहीं तो इतनी सिर पर जिम्मेदारियां, इतने सेवा केंद्र, इतने भाई बहने, इतनी टीचर्स। ब्रह्मा बाबा भी मुरली साकार मुरलियों में कहते थे, जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए, गुड़ जाने गुड़ की गोतरी जाने हाँ कितने बच्चों की बातें आती है, पत्र पढ़ते हैं। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा कहते थे सब ड्रामा अनुसार है। बाबा क्या कहते थे, नथिंग न्यू, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा कहते राजा ही स्थापन हो रही है, सब तो राजा बनेंगे नहीं, कोई प्रजा बनेंगे तो कोई दास दासी भी बनेंगे, वो सब यहीं से तैयार हो रहे हैं। पर हर एक का पार्ट अपना अपना है, बस ये सोच करके हर्षित मुख रहते हैं, यही तो ऊंचा ज्ञान है। तो सब कुछ देखते हुए कैसे न्यारा और प्यारा बनना होता है, वो तब होगा जब अंतर में हम बहुत संतुष्ट हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो हमारे पास, सब कुछ हो ये जरूरी नहीं है। वो करोड़पति अरबपतियों की तरह हम नहीं होंगे, कोई बैंकों में बहुत बड़े बड़े खाते होंगे जरूरी नहीं है, चलो हैंड टू माउथ भी होंगे, कमाया और खाया जो भी कमाई है, लेकिन अंतर में संतुष्टता सब गुणों का ताज है। सारा श्रृंगार हो पर ताज न हो तो कैसा लगेगा, राजा हो सारा श्रृंगार कर लिया पर ताज अभी तक पहना नहीं है तो कौन कहेगा ये राजा है। राजा तब माना जाए जब वो ताज भी हो तख्त भी हो, तिलक तो हो ही। तो इसलिए संतुष्टता सभी गुणों का राजा है, और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सचमुच राजा है। इसीलिए कहा जाता है लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। जो लोभी होता है वो चाहिए 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 करता रहेगा, और चाहिए 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 जो करता है ना, उसको बाबा कई बार कहते हैं चुई चुई चुई, बना वो छोटा चूहा होता है ना, छोटा होता है वो, कहीं भी घुस जाएगा और जहां भी देखो कुतुर कुतुर कुतुर, कुछ ना कुछ जो भी मिलेगा, चाहे उसको कार्डबोर्ड मिल जाए, कागज मिल जाए, साबुन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए वो कुतुर कुतुर वो करता रहेगा, काटता रहेगा। तो चुई कहीं भी घुस जाएगी और कहीं भी उसकी दृष्टि जाएगी और मुंह में डालेगा। तो बाबा कहते हैं जो इच्छाएं बहुत रखता है वो चुई की तरह है, चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए चाहिए किया माना लोभी है, कितना चाहिए कितना चाहिए, कितनी ड्रेस पहनेंगे। कई लोग हम लोगों को कहते हैं ना कि आप लोगों ने तो बहुत त्याग किया है, हम लोग इतना त्याग नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कितनी कितना इसकी अच्छा है, अब हमारे पास अगर चार साड़ियां भी होगी तो ठीक है, धुलाई किया पहना धुलाई किया पहना, और अगर रंगीन होंगी तो अगर दूसरे दिन वही साड़ी पहनी तो कहेंगे कल नहीं कल भी आपने यही पहनी थी, आज भी यही पहनी, दूसरी साड़ी नहीं है क्या, और हमने अगर वही पहन ली तो पता चलेगा क्या, साफ ही है। हाँ दिल्ली जैसे शहर में साफ नहीं हो रही, लेकिन आबू में तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है, तो और कोई हम लोगों का तो ये वाचा की सेवा ज्यादा है तो प्रेस करके फिर से पहन लिया क्या पता, पर रंगीन होगा तो कहेंगे फिर रंगीन में तो कितनी बातें आएगी, वही पर्स चाहिए वही चप्पल चाहिए वही क्या क्या चाहिए, तो इसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। ये कहावत है, कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। तो एक चींटी को भी भगवान खिलाता है यहां तक कहते हैं तो जरूर मिलेगा, बस हम अच्छे कर्म करें, प्रकृति दासी बन जाएगी अपने आप, हमको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस त्याग में भाग्य समाया हुआ है। कई लोग तो कहते बहुत त्याग है, पर कई लोग ऐसे भी हैं, बड़ी उनकी पॉजिटिव दृष्टि होती है, हम लोगों को देखकर कहते आप लोगों कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे माहौल में रहते हो, या कितना अच्छा वातावरण है, कितनी अच्छी है, सारा दिन तपस्या चलती रहती है, कितना आपसी प्यार प्रेम है, कितना आपस में एक दो को सहयोग है, कैसे काम चल रहा है पता ही नहीं चलता, कितनी ऊंची आपकी सेवा है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, ये भी कहते हैं। तो भाग्यशाली है या त्याग किया है बहुत, क्या करेंगे। परंतु उस भाग्य का आधार क्या है, त्याग। अगर ये त्याग नहीं होता तो यहाँ रह भी सकते थे, हम रह सकते थे, तो जाओ दुनिया में, किसने मना किया है आपको। परंतु इस त्याग का रिटर्न इतना भाग्य, प्रत्यक्ष फल, और ये जन्म का तो निश्चित है ही मिल भी रहा है, पर भविष्य 21 जन्म निश्चित, इतनी कमाई बाबा हमसे करवाते हैं, हम कमाई करते हैं। अगर रोगी भी हैं तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अंतिम हिसाब किताब यहीं चुकतू करना है। सब ने किया, दादियों ने भी किया, बाबा मम्मा ने भी किया, किसने नहीं किया। कई कहते हैं ना, दादियों को क्यों इतना हिसाब किताब देना पड़ेगा, वो तो योगिन थे, उन्होंने क्या ऐसे किए होंगे कर्म। लेकिन ये एक जन्म थोड़ी है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। और धर्मराजपुरी में तो चुप तो करना नहीं है, कहाँ करना है, यही करना है। तो अभी तो कैसे करेंगे, योग बल से, योग बल से उसको भस्म करना है। अगर योग बल से भस्म नहीं किया, चलो हिसाब किताब कोई रोग कुछ आया तो खुशी खुशी उसको चुप तो किया, क्योंकि बाबा कहते हैं भविष्य तुम्हारा बहुत ऊंचा है। अब ये कपड़ा पुराना हो गया, थोड़ा फट भी गया, लेकिन नया चोला मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो फट गया तो दुख होगा क्या, क्योंकि नया चोला है ना सामने। चलो थोड़ा और फट जाए तो फिर तो नया ही पहनना है, नया तैयार है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वास्थ्य, जो 21 जन्म कोई रोग नहीं होगा, तो हम उस भविष्य को देखते हैं, और इस जन्म का जो भी हिसाब किताब है या 63 जन्मों का खुशी खुशी चुकतू कर रहे हैं, नहीं तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, उससे तो यही चुकतू करे। मिसाल देते ना, एक बच्चा है मान लो, अब बच्चा खेल रहा है, शाम हो गई, खेलता ही रहता है, बच्चे मना खेलना, माँ बुलाएगी, बच्चा बेटा खाना खाओ, नहीं खेलना है, सारा दिन इतनी एनर्जी होती है, खेलना है। अब शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है, अरे बच्चा कैसे खेलता रहेगा, घर चलना है, गंदा भी हो गया, मैला भी हो गया, हाँ थक भी गया है, लेकिन फिर भी खेलना है। अब तो पहले तो माँ जाकर उसको कहेगी, बेटा चलो घर, बहुत खेल लिया, सारा दिन खेल लिया, अभी घर चलो और साफ हो जाओ, फिर माँ तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगी, बहुत कुछ करेगी, बहुत प्रलोभन भी देती है, तो बहुत प्यार से कहेगी। लेकिन बच्चा मान नहीं रहा, नहीं खेलना है हाँ, तो फिर थोड़ी आँख दिखाएगी, हाँ खेलना नहीं है, अभी चलना है घर। तो पहले प्यार से कहेगी, प्रलोभन भी देगी, देखो तुम्हारे लिए हमने अच्छे नए नए कपड़े बनाए हैं, तुम्हारे लिए ये व्यंजन बनाया, ये हाँ मिठाई बनाई, जो भी कहेगी। अब वो सुनता है, अच्छा भी लग रहा है, परंतु नहीं खेलना है, वो ज़्यादा आकर्षित करता है। फिर आँख दिखाएगी, क्योंकि उनको छोड़ना तो है नहीं, घर तो ले ही जाना है, फिर आँख दिखाएगी, थोड़ा डर तो जाएगा, लेकिन फिर भी खेलना है। फिर क्या करेगी, हाँ उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती भी ले जाएगी, क्योंकि उसको वहाँ छोड़ना तो नहीं है ना खेल के मैदान में। हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाएगी और सीधा ही नहीं घर में दाखिल होने देगी, पहले सीधा बाथरूम ले जाएगी, जाओ हाँ स्नान करो। नहीं मानता छोटा है तो खुद कराएगी, और वो बच्चा रोता भी रहेगा पर स्वच्छ तो हो रहा है ना। माँ ने तो कुछ भी नहीं किया, उसको केवल स्नान करवाया, पर खेलना का जो उसकी बुद्धि में है ना, वो इतना सता रहा है उसको, जो मैं शुद्ध हो रहा हूँ और स्वच्छ हो रहा हूँ ये सब नहीं देखता, रोता रहता रोता रहता है। पर माँ को दुख नहीं है, बच्चा रो रहा है तो माँ को दुख होता है क्या, हाय बेचारा छोड़ दो ऐसे करेगी क्या, नहीं नहीं स्वच्छ होना है, क्योंकि बच्चा तो अबोध है, उसको तो दूसरा आकर्षण है। तो स्नान भी कराएगी, वो रोता भी रहेगा और स्वच्छ भी होता रहेगा। परंतु अब स्वच्छ हो गया और फिर चाहेगी कि मैं इसको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊं, लेकिन क्या होता है बस वो इतना थक जाता है कि सीधा जाके सो जाता है। अब न उसको अच्छे कपड़े पहना सकती है, न जो बनाया उसके लिए उसको खिला सकती है, वो सो जाएगा। हाँ, क्योंकि थक गया, थक तो गया ना, परंतु स्नान किया तो वो जो उस रूप की जो थकावट थी वो चलो खत्म भी हो गई, लेकिन नींद आएगी उसको। अब हम आत्माएं भी कैसी है, खेलना है, पाठ बजाना है, ये मेरा 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 न जाने क्या क्या जमा करके रखा है। और फिर अब समय आया है, भगवान आया है हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तो पहले प्यार से भगवान क्या कहता है, हे बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। शिव बाबा ही राजयोग सिखा सकता, आज भी बाबा ने कहा कोई सन्यासी नहीं सिखा सकता, एक तो राजाई के लिए ये योग है, राजाई के लिए ये भगवान ही सिखा सकता है, सन्यासी नहीं सिखा सकते। और दूसरा, मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाऊंगा और तुम्हें नई दुनिया में स्वर्ग की राजाई दूंगा। प्रलोभन भी बहुत देते हैं, पर उसके लिए केवल पवित्र बनो, बस पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे याद करो और पवित्र बनो। शुरू से यही भगवान ने हमसे प्रतिज्ञा कराई, शुरू में जो बहने थी यज्ञ में, शिव बाबा ने यही पहली प्रतिज्ञा कराई, पवित्र बनेंगे और योगी बनेंगे। और बाबा कहते इसमें इतनी प्राप्ति है, एक तो तू भगवान के सहयोगी बनते हो, तो भगवान के सहयोगी बनने में कितनी प्राप्ति होगी आप सोचो। आज ये अंबानी फैमिली के जो नौकर है, कहते हैं ना वो पड़ा कहीं 500 नौकर है उसकी बिल्डिंग में जो काम करते हैं, सब मिला के 500, और एक एक की जो तनख्वाह है वो लाखों में है, आप सोचो एक एक की लाखों में तनख्वाह है तो कौन छोड़ेगा। तो अंबानी जैसा कलयुग में भी ऐसे है, तो बाबा तो हमें इतना देते हैं कौन छोड़ेगा, लेकिन फिर भी कई महामूर्ख देखना हो तो बाबा कहते हैं वो भी यहां देखो। तो इसीलिए टेम्पटेशन देते हैं, पर फिर बाबा फिर बच्चे कहते हैं नहीं बाबा दुनिया का सुख थोड़ा ले ले, वो चाहिए चाहिए। फिर कई तो महत्वाकांक्षी हो जाते, चलो दुनिया का नहीं चाहिए, पर यहाँ महत्वाकांक्षी हो जाते, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, दुनिया तो छोड़ दी लेकिन यहाँ कंपटीशन, इनको आगे किया मुझे नहीं किया, ये पता नहीं क्या क्या, अब ये दूसरी माया शुरू हो जाती है और उसकी और स्थिति कम हो जाती है, नीचे चली जाती है धीरे धीरे। बाबा ने कल क्या कहा, माया मेरी बच्ची है, परसों का माया बेटी को मैं कहता हूँ, ये बाबा को याद नहीं कर रहा, अभी इनको पछाड़ो। तो माया तो बड़ी आज्ञाकारी है, वो धीरे धीरे पछाड़ेगी, क्या क्या करेगी। सबसे पहले क्या करती है माया, नाक पकड़ती है, ये पहला कदम है उसका, नाक पकड़ती है, किसी का किसी को तो सजा देनी है तो क्या करो, पहले इसका नाक, बच्चे का नाक पकड़ते हैं ना, वो जरा सहज जल्दी काम पकड़ में आता है नाक। तो नाक कैसे पकड़ती है, नाक पकड़ने से क्या होता है, सफोकेशन होता है, सांस नहीं ले पाते ना। तो जैसे कन्फ्यूजन, जैसे मूंज, ज्ञान में प्रश्न 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 उत्पन्न होते रहेंगे, संशय बुद्धि बनते रहेंगे, ये है जैसे माया ने नाक पकड़ लिया। फिर क्या करती है, कान पकड़ती है, और कान पकड़ना माना पर निंदा, पर ग्लानी, पर चिंतन। वो कान से क्या जाता है अंदर, अच्छा उसने ऐसे किया, ये किया, वो किया, न जाने क्या क्या। अब माया ने कान पकड़ा है और एकदम कान खोल दिया है तो और सुनो और सुनो, और वो चौकी चौकड़ी में बैठ जाते हैं ना, चौकड़ी में बैठते हैं ना, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। माना माया ने कान पकड़ा है, पर चिंतन, पर ग्लानी, पर निंदा, पर मत, न जाने क्या क्या। फिर तीसरा क्या करती है, हाँ तीसरा क्या करती है, चोटी पकड़ती है ना, बाबा ने एक बार कहा था चोटी पकड़ती है। अब चोटी पकड़ा माना नहीं, तीसरा है थप्पड़ मारती है, बाबा कितनी बार के थप्पड़ मारती है, हमने एक बार नोट किया बाबा ने माया के लिए क्या क्या कहा है, थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारना माना मुंह फेर देना, तो बाबा को देखने की बजाय दूसरों को देखते, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो उस अमृत वेले नहीं उठता है तो चलो मैं भी सो जाता हूँ, वो भी तो नहीं उठा ना। थप्पड़ लगा दिया माया ने, और दूसरों को देखना शुरू हो जाए, मुंह ऐसे फिर जाएगा ना। फिर चोटी पकड़ती है, अब चोटी पकड़ती है माना क्या, हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे दुनिया में थे तो कितना मजा था, खाओ पियो मौज करो, अभी बाबा कहते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हाँ ये सब नहीं करना है, परहेज रखनी है, ये नहीं, ये मतलब ये नहीं, ये नहीं, वही देखते हैं। माना हम समझते हैं पहले हम बहुत अच्छे थे, पहले बहुत अच्छे थे, अभी ये तो ना, हमने अब पीछे का मुड़ के देखा, अब वो जीवन तो खत्म हुआ ना, नया जन्म लिया, लेकिन हम उसको याद करते हैं और कई दूसरे रूप से याद करते हैं जो बीती बातें। क्या याद करते हैं, पहले तो मैं बहुत शराब पीता था, मैं बहुत मांस खाता था, गुस्सा था, ये था, अब तो मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। बहन जी आपको क्या पता मैं कितना बदल गया हूँ। मैं कितना बदल गई हूँ, तो बीती बातों को देख करके मैं बदल गया हूँ इसको समझ सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब ये संतुष्टि नहीं, ये केयरलेसनेस है, ये अलबेलापन है, क्योंकि इतने तक ही सीमित थोड़ी है। अब एक स्टूडेंट फेल ही होता रहता है और एक बार पास हो गया, 40% आ गया उसको, बस खुश हो गया मैं पास हो गया, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो 90% लिया, 95 लिया, वो कहेगा मेरा 5% कहाँ गया, ये 5% भी कम क्यों आया, मुझे 100 out of 100 मिलना चाहिए था। तो वो 100 से अपनी कंपैरिजन करता है, और जो डल स्टूडेंट है वो 0 से करता है। तो हम बहुत अच्छे हो गए, बहन जी मैं कितना बदल गया, बहन जी आपको नहीं पता, अब जैसे बहन जी को कुछ पता ही नहीं है। बाबा को भी कहते ना, बाबा आपको क्या पता, आप दुनिया में आओ तो पता चले, जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं है, हम समझते हम ही बहुत होशियार है। तो बाबा कहते पीछे मुड़ के देखो ही नहीं, क्यों देखते हो, वो तो पूर्व जन्म था ना, तो पूर्व जन्म अगर किसी को याद रहता है ना, वो इस जन्म में कभी सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए अच्छा है पूर्व जन्म का पता नहीं है। अब मेरी पिछले जन्म की पत्नी कौन सी थी, बच्चे कौन से थे, ये कौन से थे, कईयों का सुनाते हैं कि उसको पूर्व जन्म याद था, अब वही याद आता रहेगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे फलाना। अब 10 साल का बच्चा कहेगा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो माँ बाप तो हंसेगे नहीं, क्या बोल रहा है। तो पूर्व जन्म तो इसीलिए ड्रामा अनुसार याद रहता ही नहीं है, तो ये भी तो पूर्व जन्म ही था ना, बाबा का बच्चा बनने से पहले पूर्व जन्म था, तो उसको हम क्यों याद करते हैं? तो वो अच्छा था या ये अच्छा है या अभी बहुत अच्छा हूं, वो भी क्यों? ये चोटी पकड़ी है माया ने। फिर आगे क्या करता है? बाबा ने क्या कहा? माया क्या करती है? हाँ, घुसा लगाती है। एक थप्पड़ लगी, एक घुसा लगा, थोड़ी चोट आई, इसी ने कुछ कह दिया, बस अभी मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, ये माया ने घुसा लगाया। क्यों नहीं सहन कर सकते? क्या क्या बड़ी बात है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। चलो कुछ कह भी दिया तो आपकी भलाई के लिए कहा, मान जाओ, बदल जाओ, आपके आपको ऊंचा बनाने लिए कहा है ना, कोई आप क्या आपको गिराने के लिए थोड़ी कहा है। तो ये माया ने घुसा मारा है। फिर आगे क्या करती है माया? हाँ, गिरा देती है, धक्का मार के गिरा देती है। कोई ना कोई विकार के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकार के वश में भी काम विकार, वो तो एकदम ही गिरा देगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। और वो शुरू कैसे होगा? आज भी बाबा ने कहा नाम रूप में फंसना। अब उसका योग तो लगेगा ही नहीं, योग कहाँ लगेगा, क्योंकि नाम रूप में फंसा हुआ है, कोई आकर्षण है उसको, तो योग तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सब संबंध मेरे से जोड़ो। क्योंकि कोई भी अगर देहधारी का संबंध आकर्षित करेगा, बुद्धि वहीं जाएगी, जरूर जाएगी, बाबा से योग टूट जाएगा। और योग टूट गया क्योंकि नाम रूप की बीमारी आ गई, फिर पता नहीं क्या क्या प्लान्स बनाएंगे। तो गिरा तो हाँ, धीरे 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 ओम शांति, मर भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा, दुनिया के किस कोने में चला गया पता भी नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते जाएगा कहाँ, हट्टी तो एक ही है, जाओ जाओ घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ। लेकिन जिसने बाबा के ज्ञान का थोड़ा सा भी टेस्ट ले लिया है, उसको सचमुच और कोई टेस्ट पसंद ही नहीं आएगी। होता ना, जिसने सचमुच वो हापूस आम खा लिए मानो, अब उसको कितने भी वैरायटी आम खिलाओ, क्योंकि नहीं उस जैसा टेस्ट नहीं है, वो तो सब आमों का राजा है ना। हापूस आम कितने महंगे होते हैं आजकल, थोड़े सस्ते हुए या नहीं? हाँ रमा बहन, नहीं हुए। तो इसलिए वो जो टेस्ट बाबा का ले लिया है, ज्ञान का ले लिया है, वो तो भूल नहीं सकता है, वो बीज पड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसमें क्यों समय श्वास संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हो? समय कितना कम है। और बाबा ने अचानक का पाठ तो पढ़ा ही दिया है ना, सब अचानक होगा। कोई कहेगे बाबा तो अचानक तो शुरू से कहते आ रहे हैं, शुरू में भी जब यज्ञ में समर्पित हुई, भाग के आई, बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, और 86 दिवालियां चली गई, 86 साल हो गए ना। लेकिन बाबा अगर ये नहीं कहता कि अगली दिवाली नहीं आएगी, तो ये यज्ञ का फाउंडेशन पड़ता, ये सब समर्पित होते? क्योंकि बीज डालना था ना, बीज तो गुप्त ही होता है ना। इसीलिए 14 साल जो बट्टी बनी, ये बीज अंदर पड़ा, ये उसी का ही परिणाम था ना, जो बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, और उसी इसके कारण सब भागे। फिर साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार में सचमुच ऐसे अनुभव हुआ कि बस सचमुच अगली दिवाली नहीं आएगी। विनाश का साक्षात्कार, धर्मराजपुरी का साक्षात्कार, नई दुनिया का साक्षात्कार, जैसे ब्रह्मा बाबा को हुआ वैसे अनेकों को हुआ। ब्रह्मा बाबा को जो हुआ साक्षात्कार, तुम ये बनने वाले हो या विनाश या स्थापना का, सचमुच बाबा को इतना एक सेकंड में वैराग आ गया। नहीं तो क्या बड़े जौहरी थे बाबा। अभी बीच में सिंधियों का ग्रुप आया था एक, अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले सिंधियों का एक छोटा सा सम्मेलन किया था, से बड़े बड़े टॉप सिंधी आए थे, तो उसमें ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक पार्टनर था ना, उनका शायद परपोता या कोई, अब वो अपना वो अनुभव सुनाता था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो अपने उनके जो बाबा का भागीदार था उनके लिए बताते थे, इतने बड़े बड़े हीरे बाबा के होते थे, इतने बड़े बड़े हीरे। आप सोचो, छोटे छोटे हीरे तो बहुत होते, वो तो उनकी तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं, पर बड़े बड़े हीरे थे। और बाबा कैसे अंग्रेज लोग आते थे, राजा लोग आते थे, कैसे वो खरीदते थे, बाबा जाते थे महलों में बेचने, मतलब इतनी वंडरफुल बिजनेस थी बाबा की, जबरदस्त बिजनेस थी। लेकिन जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ, क्या किया, फट से सब कुछ पत्थर दिखाई देने लगे बाबा को। अगर बाबा अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी या जो भी थी संपत्ति, अगर माताओं के सपोर्ट नहीं करते होते, विल नहीं करते होते, तो स्थापना होती, वो माताएं बिचारी हो तो का वो समय की जो स्थिति थी माताओं की, बड़ी दयनीय स्थिति थी। उनकी कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं थी, बस चार दीवारों में कैद बस। और सिंधी परिवार तो ऐसे थे, पति लोग तो दुनिया घूमते थे, उनकी बिजनेस, उनको सिंध वर्की कहते थे, सारी दुनिया में बिजनेस थी। कभी कभी आ जाते थे सिंध में अपने घर में। और बेचारी स्त्रियां चार दीवारों में सारा समय कैद, बच्चों की पालना मतलब वही। और पुरुष लोग तो मौज करते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे विदेशों में, सिंधी लोग हैं जानते हैं ना, तो वो थे। लेकिन कैसे भगवान ने स्थापना की और ये शुरुआत हुई, ये भी बाबा कहते हैं धर्म की स्थापना में विघ्न बहुत पड़ते। उस दिन भी बाबा ने कहा, जितने भी धर्म पिताएं आए, नई बात कही उन्होंने, और नई बात जो कही वो जो उस समय के जो लोग थे उनको उनके गले नहीं उतरा। क्राइस्ट ने गॉड इज लव, लव दाई नेबर, आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दो किलो या भी मारो, मना प्रेम 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 उसने सिखाया। लेकिन उस समय जो जू धर्म वाले थे, वो जू ही था, जू रिलीजन का था, अब्राहम से वो जुडाइज्म शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहा है, ऐसे प्रेम प्रेम कैसे चलेगा। तो बहुत कुछ कहा इसने, और उन्होंने कैसे सूली पर चढ़ाया उसको। आप सोचो गुरु नानक के लिए कितनी बातें आई होगी, जितने भी धर्म पिताएं आए सबके लिए बहुत कुछ उन्होंने भी तो सहन किया होगा, जरूर किया, क्योंकि कुछ अलग समाज की बातों से कुछ अलग कहा तो नए धर्म की स्थापना हो गई। और वो समय की मांग थी, और अभी जो समय की मांग क्या है, जो बाबा कहते हैं बच्चे इन सब को भूलो, क्या करो, मुझे याद करो, ये सब खत्म होना है। इसीलिए संतुष्ट रहना इतना जरूरी है अगर संपूर्ण बनना है तो। ओम शांति।